नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। इट स्टीवन कोटलर और जेमी व्हील की पुस्तक स्टीलिंग फायर एक गैर कथा विश्लेषण है जो असाधारण चेतना अवस्थाओं और उच्च प्रदर्शन के उभरते संबंध की पड़ताल करती है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यह है कि जिन अनुभवों को कभी रहस्यवादी, सीमांत या केवल मनोरंजन से जुड़ा माना जाता था, वे अब नवाचार, सीखने, रचनात्मकता और सहयोग के व्यावहारिक साधन क्यों बन रहे हैं। लेखक सिलिकॉन वैली की प्रयोगशील संस्कृति, नेवी सील्स के प्रशिक्षण परिवेश, खेल जगत और स्वतंत्र वैज्ञानिकों के उदाहरणों के माध्यम से फ्लो तथा परमानंद जैसी अवस्थाओं को देखते हैं। उनका तर्क केवल व्यक्तिगत अनुभूति के बारे में नहीं है, बल्कि उन सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियों के बारे में भी है जो ऐसी अवस्थाओं को अधिक सुलभ बनाती है। पुस्तक मनोविज्ञान, तंत्रिका जीव विज्ञान, औषध विज्ञान और तकनीक के संगम को एक नई प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है। साथ ही यह संकेत देती है कि तीव्र अनुभवों का मूल्य तभी है जब व्यक्ति उन्हें विवेक, संदर्भ और स्थिर जीवन में समाहित कर सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फ्लो से व्यापक परमानंद को उपयोगी चेतना अवस्था के रूप में समझना। पुस्तक का आरंभिक वैचारिक योगदान यह है कि यह फ्लो को केवल किसी काम में डूब जाने की परिचित अवस्था तक सीमित नहीं रखती। कोटलर और व्हील परमानंद शब्द के अंतर्गत ऐसी अवस्थाओं की चर्चा करते हैं जिनमें सामान्य आत्मबोध अस्थायी रूप से ढीला पड़ सकता है, समय की अनुभूति बदल सकती है और व्यक्ति अधिक एकाग्रता, जुड़ाव या संभावनाओं का अनुभव कर सकता है। लेखकों के लिए मुख्य बात अनुभव का रोमांच नहीं, उसका कार्यात्मक परिणाम है। उनका मानना है कि ऐसी अवस्थाएं कठोर मानसिक आदतों को कुछ समय के लिए कम कर सकती हैं, जिससे नए संबंध देखना, तेज सीखना और टीम के साथ बेहतर समन्वय संभव हो सकता है। यह दृष्टि पारंपरिक उत्पादकता साहित्य से अलग है, जो प्रायः इच्छा शक्ति, अनुशासन और समय प्रबंधन पर केंद्रित रहता है। फिर भी पुस्तक यह नहीं कहती कि हर तीव्र अनुभव उपयोगी होता है। उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि अवस्था किस परिस्थिति में उत्पन्न हुई, व्यक्ति की मानसिक तैयारी क्या थी और अनुभव के बाद उसके निष्कर्षों को जीवन तथा काम में कैसे उतारा गया। इसलिए परमानंद यहाँ कोई जादुई समाधान नहीं, बल्कि चेतना की एक संभावित कार्यप्रणाली है जिसकी सीमाएं और जोखिम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, चार शक्तियों का संगम, मनोविज्ञान, तंत्रिका जीव विज्ञान, औषध विज्ञान और तकनीक। इट स्टीलिंग फायर असाधारण अवस्थाओं को एक ही कारण का परिणाम मानने के बजाय चार परस्पर जुड़ी शक्तियों के संगम के रूप में रखती है। मनोविज्ञान व्यक्ति की अपेक्षाओं, ध्यान, प्रेरणा और सामाजिक सुरक्षा की भूमिका समझाता है। तंत्रिका जीव विज्ञान यह प्रश्न उठाता है कि ध्यान, भावनाओं और आत्मबोध से जुड़े मस्तिष्कीय तंत्र ऐसी अवस्थाओं में कैसे बदलते हैं। औषध विज्ञान उन पदार्थों के प्रभावों से संबंधित है जो चेतना को बदल सकते हैं, जबकि तकनीक संगीत, प्रकाश, ध्वनि, जैविक प्रतिक्रिया, आभासी परिवेश और संवेदी परिवर्तन जैसे साधनों की ओर संकेत करती है। पुस्तक की विशिष्टता यह दिखाने में है कि ये क्षेत्र अब अलग अलग नहीं चल रहे। उदाहरण के लिए, किसी अनुभव की प्रभावशीलता केवल उपकरण से नहीं आती, बल्कि उसकी रूपरेखा, प्रशिक्षक, समूह, उद्देश्य और बाद की समीक्षा से भी बनती है। यह ढांचा पाठक को अतिसरलीकृत दावों से बचाता है। कोई एक उपकरण सभी लोगों के लिए समान परिणाम नहीं देगा। इसी कारण लेखक उस उभरते क्षेत्र पर ध्यान देते हैं जहां अनुभवों को जानबूझकर डिजाइन किया जाता है। उनका प्रश्न यह नहीं कि तकनीक स्वयं अच्छी है या बुरी, बल्कि यह है कि चेतना को प्रभावित करने वाली तकनीकों के डिजाइन, पहुंच और जवाबदेही के नियम कौन तय करेगा। तीसरा, सिलिकॉन वैली और संस्थागत नवाचार में चेतना प्रयोगों की भूमिका। पुस्तक सिलिकॉन वैली को केवल तकनीकी उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि प्रयोग करने वाली संस्कृति के रूप में देखती है। इस परिवेश में प्रतिस्पर्धा तेज है, समस्याएं जटिल हैं और नई संभावनाओं को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखकों के अनुसार इसी कारण कुछ उद्यमी, निवेशक और रचनात्मक पेशेवर ध्यान, गहन सामुदायिक आयोजनों, शारीरिक चुनौती और अन्य चेतना बदलने वाली पद्धतियों में रुचि लेते हैं। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संस्थागत नवाचार केवल बेहतर विचारों से नहीं बनता। इसके लिए ऐसे वातावरण भी चाहिए जहां लोग अनिश्चितता, असफलता और जटिलता को नए ढंग से देख सकें। साझा तीव्र अनुभव कभी कभी टीमों के बीच भरोसा और संवाद बढ़ा सकते हैं, पर वे किसी संगठन की रणनीति, नैतिकता या कौशल का विकल्प नहीं है। इस सीमा को समझना आवश्यक है, क्योंकि कॉरपोरेट संदर्भ में अनुभव को उत्पादकता के औजार में बदलने का दबाव पैदा हो सकता है। कर्मचारियों की सहमति, निजता और मानसिक सुरक्षा तब केंद्रीय मुद्दे बन जाते हैं। स्टीलिंग फायर इस विरोधाभास को सामने लाती है। एक ओर संस्थाएं मानव क्षमता के नए स्रोत खोज रही हैं, दूसरी ओर वही संस्थाएं अनुभवों को बाजार योग्य वस्तु में बदल सकती हैं। इसलिए पुस्तक नवाचार के साथ शक्ति और जिम्मेदारी का प्रश्न भी जोड़ती है। चौथा, नेवी सील्स सीखने की गति और नियंत्रित प्रशिक्षण परिवेश। नेवी सील से जुड़े प्रसंग पुस्तक को उच्च प्रदर्शन की एक अलग कसौटी देते हैं। यहाँ लक्ष्य निजी आत्मखोज नहीं, बल्कि दबाव, थकान और अनिश्चितता के बीच सीखने तथा निर्णय की क्षमता है। लेखक ऐसे प्रशिक्षण परिवेशों की चर्चा करते हैं जहां ध्यान नियंत्रण, पुनर्प्राप्ति, संविधि व्यवधान में कमी और मानसिक तैयारी को प्रदर्शन के महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। फ्लोटेशन टैंक जैसे उपकरणों के उल्लेख के पीछे मूल विचार यह है कि बाहरी उत्तेजनाओं को घटाकर व्यक्ति को विश्राम, एकाग्रता या सीखने के लिए अनुकूल अवस्था तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। हालांकि इस प्रकार के प्रभावों को हर व्यक्ति, हर कौशल और हर परिस्थिति पर लागू मानना उचित नहीं होगा। तेज सीखने के आकर्षक दावों के लिए स्वतंत्र और दोहराए जा सकने वाले प्रमाण आवश्यक हैं। पुस्तक का अधिक टिकाऊ पाठ यह है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन केवल अधिक कठोर अभ्यास से नहीं बनता। अभ्यास और विश्राम, तनाव और पुनर्प्राप्ति, व्यक्तिगत कौशल और समूह समन्वय के बीच संतुलन जरूरी है। सैन्य उदाहरणों को सामान्य कार्यालय जीवन में सीधे उतारना भी सीमित होगा, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारियां और जोखिम अलग हैं। फिर भी वे यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिक अवस्था को प्रशिक्षण की परिधि नहीं, उसके डिजाइन का एक घटक माना जा सकता है। अंत में लाभों के साथ जोखिम, प्रमाण की सीमाएं और अनुभव का एकीकरण। इट स्टीलिंग फायर की सबसे उपयोगी आलोचनात्मक परत यह प्रश्न उठाती है कि असाधारण चेतना अवस्थाओं की खोज कब लाभकारी रहती है और कब हानिकारक हो सकती है। लेखक विविध रास्तों का उल्लेख करते हैं जिनमें ध्यान, श्वास अभ्यास, खेल, नृत्य, सामुदायिक आयोजन और कुछ संदर्भों में मनःसक्रिय पदार्थ शामिल हैं। लेकिन इन रास्तों की सुरक्षा, वैधता और उपयुक्तता समान नहीं है। किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, पूर्व अनुभव, सामाजिक सहयोग, स्थान की सुरक्षा और स्थानीय कानून परिणामों को गहराई से प्रभावित करते हैं। तीव्र अनुभव को स्वयं में परिवर्तन मान लेना भी एक भूल हो सकती है। व्यक्ति को अनुभव के बाद उसके अर्थ पर विचार करना, दैनिक आदतों में उपयुक्त बदलाव करना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेना आवश्यक हो सकता है। पुस्तक के प्रति एक उचित आलोचना यह है कि उसका उत्साह कभी कभी उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों की मजबूती से आगे निकलता प्रतीत होता है। कुछ शोध आरंभिक हैं और अनेक दावे व्यापक पुनरावृत्ति मांगते हैं, इसलिए विवेकपूर्ण पाठक को प्रेरक उदाहरण और स्थापित निष्कर्ष में अंतर रखना चाहिए। पुस्तक का जिम्मेदार उपयोग किसी तीव्र अवस्था का पीछा करना नहीं, बल्कि सुरक्षित, कानूनी और प्रमाण आधारित तरीकों से ध्यान, पुनर्प्राप्ति तथा रचनात्मक अभ्यास को बेहतर समझना है। निष्कर्ष में, स्टीलिंग फायर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रदर्शन, रचनात्मकता और चेतना के संबंध को केवल पारंपरिक अनुशासन या प्रेरणा की भाषा में नहीं समझना चाहते। उद्यमी, प्रबंधक, प्रशिक्षक, खिलाड़ी, शोध में रुचि रखने वाले पाठक और मानसिक अवस्थाओं के डिजाइन पर विचार करने वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ किसी तैयार नुस्खे में नहीं, बल्कि प्रश्नों के एक विस्तृत ढांचे में है। यह पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि ध्यान, सामाजिक संदर्भ, शरीर, तकनीक और संस्कृति मिलकर निर्णय तथा सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। पुस्तक समान विषय की अनेक पुस्तकों से इसलिए अलग है कि यह फ्लो को केवल खेल या व्यक्तिगत दक्षता तक सीमित नहीं करती। यह सेना, तकनीकी कंपनियों, वैज्ञानिक प्रयोगों और सामुदायिक अनुभवों को एक ही व्यापक बदलाव के संकेतों के रूप में रखती है। इसी व्यापकता के कारण इसका दायरा आकर्षक है, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पाठक को इसके उदाहरणों को अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मानना चाहिए, विशेषकर जहां मनस्क्रिय पदार्थ, तीव्र प्रशिक्षण या महंगी तकनीकों की बात हो। स्थानीय कानून, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और प्रशिक्षित मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना जरूरी है। अंततः यह पुस्तक असाधारण अनुभवों का उत्सव भर नहीं है, अपने सर्वोत्तम रूप में यह चेतना को एक गंभीर मानवीय और संस्थागत विषय मानने का आग्रह है, जहां क्षमता बढ़ाने की इच्छा के साथ सुरक्षा, सहमति, प्रमाण और जिम्मेदारी की चर्चा भी अनिवार्य है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीवन कॉटलर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।